todos los muchachos que practican practican y pronto tiene que ir se va a batir de parte y pronto ya लेकिन जड़ चित्र को भी देखेंगे तो भी शिव बाबा याद आवेगा। बाप को याद तो जरूर ही करते, बाप को और रचना की आदि मध्यंत को याद करें। रचना की आदि भी मध्य भी और अंत भी ये क्या हुआ मंथन की चेंज हुई। लेकिन पहली बात क्या बताई बाप को याद करो वो पहली चेंज और वो सेकेंडरी स्टेज रचना का आदि मध्य अंत रचयिता तो बीज है। बीज में तो आदि मध्य अंत सब समाया हुआ है। इसको कहेंगे याद किया था ख्याल भी चलता है कैसे चित्र बनावे आइडिया तो देनी पड़ती है ना। और हंगामा भी इस बात पर होता है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम बहुत हो गया है। कहते हैं कि ये भगाती है। अब ये समझाना पड़ता है कि भगाती है बिंदु का महाराज महारानी बनाने के लिए। कहते हैं कि कृष्ण ने भगाया इसलिए बगाया महाराजा महारानी बनाने के लिए ही तो बगाया ना। तो फिर गाली देने की क्या दरकार। वास्तव में कोई साहस नहीं करते पवित्र रहने का तो बहुत संग दोष लगता है। थोड़ी उम्र बड़ी हुई 13-14 साल के हुए संग दोष में आ जाते हैं नजर बिगड़ पड़ती है। देखा गया 8-10 साल के बच्चों की भी नजर सजा खराब हो जाती है। ये दुनिया ही ऐसी भ्रष्टाचारी होती जा रही है। इसमें कोई कोई भ्रष्टाचारी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बड़ी संभाल भी करनी पड़ती है जबकि संग दोष तो बढ़ता जाता है। सेंटर में तो बहुत प्रकार के आते हैं आने वालों में कोई कोई गंदा निकलता है तो माथा ही खराब कर देते हैं। आजकल की दुनिया में गुंडों का बाजार बहुत गर्म है बहुत गंदी दुनिया है। और ये बातें सिर्फ तुम बच्चों ही जानते हो ये दुनिया गंदी है और दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है। बाप के लिए तो ये बातें कोई नई बातें नहीं। तूफान आते रहते हैं धर्म से भिन्न पड़ते हैं आखिरी तो बच्चों की विजय हो जाएगी। ये बीच में अनेक प्रकार के तूफान तो आने ही हैं कि भाई आया हुआ है बच्चों को इस विषय में नदी से पार ले जाने के लिए तो भारत का बेड़ा पार करना है। तूफान है जो बेड़े में लगते रहते हैं, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। इस नैया को तूफान जरूर लगेंगे और नैया को तूफान भी तब लगते हैं कब लगते हैं जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। कोई कोई नैया डूब भी जाती है। मतलब नहीं चलते तूफान और ही ज्यादा तंग करते हैं तो कोई नैया डूब जाती है। देखा जाता है भले कोई बच्चे को चलते चलते ठोकर लग जाती है फिर नहीं आते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बुड्ढा डूब गया। नहीं, बिल्कुल डूबने की तो बात ही नहीं। जितने भी ये ज्ञान एक बार ले लिया तो वो व्यर्थ कभी जाने वाला नहीं है। पद जो ऊंच पाना था वह उतना पद ऊंच नहीं पा सका, फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यहाँ जो आते हैं उनका कोई न कोई प्रकार से कल्याण जरूर हो जाता है। अच्छा चलो चंडाल का जन्म पावेंगे तो जो चंडाल का जन्म पावेंगे वो भी स्वर्ग में तो आवेंगे ना। बाकी हाँ पेट बड़ी जोर से लगती है, अगर अवस्था मजबूत नहीं है तो फिर गिरेंगे। सर्विस को युक्ति से चलाना पड़ता है, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ती है और बहुत मीठा शांत स्वरूप होना पड़ता है। कोई गुंडा आ जावे उनके ऊपर भी नफरत नहीं करनी है, लपटा मार के बाहर नहीं निकालना है, बड़े प्यार से बाहर निकाला जाता है युक्ति से, उससे झगड़ा नहीं करना होता है। सेंटर्स में कोई झगड़ा न हो तो अच्छी बात है। ईश्वरीय यज्ञ में बेगम तो जरूर पड़ेंगे, ज्ञान मिला हुआ है तो ये विघ्न क्यों पड़ेंगे। कारण क्या, श्रेष्ठ जन्म की संसार है। भले ज्ञान बुद्धि में है तो भी संसारों के आधार पर आत्मा मजबूर हो जाती है। रामानुसार ये सब जरूर होना है। क्या बता दिया, कोई गुंडा आ जावे तो उसको प्यार से युक्ति से निकालना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये झगड़े जरूर पड़ेंगे। राम अनुमूल है तो उनको मिठाई थोड़ी सकेंगे। पाप तो समर्थ है जो आकर के पतितों को पावन बनाता है, पावन बनाए करके संगति देते हैं, मगर तूफान विघ्न तो आवेंगे। ऐसे थोड़े ही कि बाप विघ्नों को उड़ाई देंगे। बहुत कहते हैं बाबा ये समस्याएं हैं ये दूर कर दो, ये विघ्न आते हैं इनसे छुड़ाओ तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीखा हो जाएगा। बाप तो कहते हैं ड्रामा में दुगुनों की भी नूज है क्या, क्योंकि जो भी है बनी बनाई बन रही है, विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो भी क्रिएट किसने किए, बनाई किसने, आपने पूर्व जन्म में वो समस्याएं बनाई है तो हमारा सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति के रूप में आती है। तो कहते हैं विघ्न पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं, बाप समझाते हैं बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है, लाल भी बने और इसे दुनिया से प्रीति भी निभावे, बहुत गुप्त बच्चे हैं। बाप तो आते हैं राजधानी स्थापन करने के लिए, ये पक्का बुद्धि में रहना चाहिए कि कितने भी विघ्न पड़े लेकिन बाप राजधानी स्थापन किए बगैर वापस नहीं जा रहे। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समझते हैं कि बाप हमारी राजधानी स्थापन करके चला गया, कहाँ स्थापन करके चला गया, अब हमारी राजाई चल रही है, तो राजाई चल रही है कि राजधानी स्थापन हो गई है, राजधानी स्थापन होती है तो राजा रानी भी चाहिए, राजा रानी दिखाई न पड़े तो राजधानी किस बात की, तो अंदर अंदर बातें बनाए लेते हैं, कोई को राजा के रूप में समझ लेते हैं, कोई को रानी के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे मन के मानने की मौज से नहीं होता है। आप तो कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने आया हूँ, ऐसे नहीं जैसे जैसे मान लिया कि मनमोहिनी दीदी रानी है, कुमार का दादी राजा है और ये राजधानी स्थापन हो गई, तो धाम शांति धाम स्थापन हो गया और हम मालिक बन गए। बाप राजधानी स्थापन करके जाएगा और माम साहबों में नहीं होती है राजधानी स्थापन, दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है जमुना की कंट्री पर, तुम बच्चों को कोई लड़ाई आदि नहीं करनी, क्योंकि तुम जानते हो राजधानी पहले सूक्ष्म में स्थापन होगी, जड़ में राजधानी स्थापन नहीं होगी, जैसे अंग्रेजों ने दिल्ली में नई दिल्ली बनाई तो पत्थरों की लाल पत्थरों की सारी दिल्ली बनाई दी, राजधानी बनाई दी। बाप सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थापना आदि करते हैं, मन बुद्धि में पहले स्थापना होती है। हमारी राजधानी चैतन्य है, जड़ नहीं है, लेकिन चैतन्य में भी तूफान नहीं आवेंगे ये नहीं हो सकता, तूफान भी आवेंगे, विघ्न भी पड़ेंगे, नैया डोलेगी, लेकिन ये गारंटी है कि ये डूबेगी नहीं, स्थिरियम करके जाएगा। बीच में राजधानी डूब जाए ये नहीं होती, बच्चे डूबते हैं उनकी भी ये गारंटी है कि जितना ज्ञान लिया है वो विनाश को नहीं पावेगा, दोबारा आगे कहाँ जाएंगे, इतना जरूर ध्यान रखना है कि हम कहीं बाहुबल से राजधानी स्थापन तो नहीं कर रहे, बाप आया हुआ राजयोगी बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। हम राजयोग के से राजधानी स्थापन कर रहे हैं या बाहुबली स्थापन कर रहे हैं? राजयोग से राजधानी स्थापन होगी, सारे विश्व के ऊपर राज्य करना है। बाहुबल से तो हद की राजाई मिलती है, बाप तो बेहद का है, वो धर्म पिताएं हद के हैं, तो उन धर्मों में हद की राजाई मिलती है। और ये बाप बेहद का है तो बेहद की राजाई मिलती है। सारी दुनिया सारे तत्वों के ऊपर तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, हद की राजाई की बात नहीं। तो पक्का कर देना चाहिए कि बाहुबल से हद की राजाई मिलती है और योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। ऐसे लोग गुस्सा आ जाए हाथ पहुंच लाए जाते या उल्टा पुल्टा बोलने लग पड़े, अगर उल्टा पुल्टा बोलते भी हैं, हाथ पांव चलाए देते हैं या धन बल का उपयोग करके कोई को मात दे देते हैं, घुसखोरी कर देते हैं, कोई को नीचा दिखाई देते हैं, तो ये सब बाहुबल में आए। हम तो कोई प्रकार का बाहुबल उपयोग नहीं करना चाहते। योग बल के विश्व राज्य आज स्थापन करते हो, इसलिए योग बल की नहीं है। योग बल से तुम बच्चों को बाप से बर्तन लेते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखने से तुम्हारी आत्मा बलवान बनेगी, तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको पवित्रता की ताकत मिलेगी। इवर प्योर बाप से ताकत मिलेगी, पवित्रता से दुनिया के सारे कार्य होते। ये बुद्धियोग की बात है, बुद्धियोग जहां रहता है तो संग का रंग जरूर बनता है। आंखों से जो चीज देखी जाती है तो बुद्धि में याद आती है, कोई भी इंद्रियों से कोई चीज अनुभव की जाती है तो बुद्धि से याद आती है। तो जो बाप के संग का रंग है वो बच्चों को याद जरूर आता है। बाप प्योर है, एवर प्योर है, तो इवन प्योरिटी का संघ का रंग न लगे ये हो नहीं सकता, ताकत जरूर मिलती। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो बल मिलेगा। शासक बताई माँ में कम याद करो तो बल मिलेगा। अगर व्यभिचारी याद आती रही तो बल नहीं मिलेगा। देवता बहुत बल वाले थे ना, देवता बहुत बल वाले थे, है? राक्षसों को देख करके हवा खराब हो जाती थी, है? देवताएं ज्यादा बलवान होते हैं कि असुर ज्यादा बलवान होते हैं? असुर बहुत बलवान होते हैं। कहते हैं आंसुओं की पैदाइश पहले हुई, इसी से दैत्य पैदा हुए और बाद में अदिति से देवता पैदा हुए। तो बड़ी रानी कौन हुई? दिति। नाम कैसे रखे हुए। स्थिति का अर्थ क्या होता है? फैलाने वाली, एक में बुद्धि न रहे, दो दो में, तीन तीन में, चार चार में बुद्धि जाती है तो उससे बनते हैं दैत्य। वो दैत्यों की पैदाइश करने के निमित्त बन जाती है। और जो अदिति है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा लोग उनसे पैदाइश होती है देवताओं। तो यहाँ बोला देवताएं बलवान होते हैं। कैसे बलवान होते हैं? है? हाँ, अगर एक बात से संयोग है, एक बात दूसरा न कोई ऐसा बुद्धि में बुद्धता हुआ है तो क्या नाम होगा? वो देवताएं भी पावरफुल होते हैं। जैसे बोला नदी वो जिसका सागर से कनेक्शन जुटा हुआ, अगर कनेक्शन नहीं जुटा हुआ है तो नाला बन जाती है। तो ऐसे ही जो बाप से बच्चे संपर्क संबंध जोड़ करके रखते हैं या बाप के संबंध के आधार पर संबंध बनाते हैं, उनकी पावर बढ़ती है। तो देवताएं बनवाने थे कहाँ की यादगार? सत्यु की। सत्यु की देवताएं बनवा नहीं थे, ये तो संगमयुग की बात है। संगमयुग में आकर के देवताएं बनते हैं, विश्व के बादशाह बनते हैं। और किसी की तो बात ही नहीं, न वहां बाप होते। तो तुम विश्व पर राज्य करते थे, अभी फिर से बाप आकर के तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है ना। तो उनसे ताकत पाए करके बलवान बनना, बने नहीं हो, उनसे ताकत पा करके बलवान बनना है। किनसे? उनसे। अरे कितन से बोल रहा है? ब्रह्मा कितन से बोल रहा है? तो उनसे क्यों कह दिया? इसका मतलब ब्रह्मा के तन द्वारा जो पार्ट है वो एवर प्योर बाप का पार्ट नहीं है। एवर प्योर बाप का पार्ट भविष्य में आने वाला है, उनसे तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। कहते हैं ईश्वर यह नहीं कर सकता है क्या कि हमारे विघ्नों को दूर कर दे, हमारी समस्याओं को ठीक कर दे? भगवान है तो क्या नहीं कर सकता? नहीं, बाप ये विघ्न दूर करने के लिए नहीं आए हैं। ये कर्म तो तुमको अपने कूटने हैं, कर्म बाप ने नहीं किए। जिसने कर्म किए उन कर्मों का फल उसको भोगना जरूर पड़ेगा। बाप आए ही हैं पावन बनाने के लिए। बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना, घर का रास्ता बताने के लिए आए। तुम घर का रास्ता भूल गए ना, पतित आत्मा तो जाए दी सके। जिसकी बुद्धि में पतितपना भरा हुआ है, बाहर से भल कहता हो कि पवित्रता की चीज है लेकिन अंदर से पवित्र रह नहीं पाता हो, अंदर से चालाकी भरी हो, तो बाप कहते हैं दोनों तरफ से जोड़ जोड़ जुटेगा। बाप चाहे पवित्र बनाना और बच्चे अंदर से अपवित्र बनने का संकल्प धारण किए हुए हो तो बाप नहीं बन सकती, पतित आत्मा जा ही नहीं सकती। गति कब आएगी? जब आत्मा दृढ़ निश्चय धारण कर ले कि हमें तो पावन बन रही है। बाप आते ही है समुप्रधान से ससुप्रधान बनाने, बाप कहीं शक्ति मिलती है जन्म जन्मांतर की, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं ना। क्या पाप हुए? अनेकों में बुद्धि बटने से पाप होते हैं और एक में बुद्धि बटने से जाने से पुण्य बनता है। क्या पुण्य बनता है? अनेक जन्मों के पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। वो समझते हैं कृष्ण शक्तिवान था। कौन समझते हैं? वो समझते हैं कृष्ण शक्तिवान था। कौन? वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि कृष्ण शक्तिवान था। पाप कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, रचना है, रचना से ज्यादा पावरफुल रचयिता होता है। कृष्ण रचना शक्तिवान नहीं है, रचयिता बाप जिसे तुम पति के पावन बनते हो वो सर्व शक्तिवान बाप है। सदर्शन चक्र फिराता है बच्चों का, सुदर्शन चक्र फिराने के लिए कौन आता है? बाप आता है, कहता है तुम पहले अपने अनेक जन्मों का चक्र अपनी बुद्धि में फिराते हो, एक युग का नहीं चारों युगों का चक्र तुमको बुद्धि में फिराना। वो कहते हैं कृष्ण सुदर्शन चक्र घुमाता था। क्या घुमाता था? कृष्ण क्या सुदर्शन चक्र घुमाता था? सत्य चेता द्वापर गली संगम युग, ये रट्टा लगाना, इसको उसको सुदर्शन चक्र घुमाना नहीं कहा जाता। ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो अनेक प्रकार के रत्न निकलेंगे। तो ऐसे नहीं कि सत्यपुत्र का द्वापर कलयुग फिर संगम युग, इन चार युगों का पांच युगों का रट्टा लगाने से कोई विनाश हो जाएगा? नहीं, ये तो हिंसा हो गई। बाप कोई आकर के हिंसा नहीं कराते। जैसा उन भक्तों ने समझ लिया है कि सुदर्शन चक्र घुमाया तो सबके गले कट गए, गला काटना मना, जय अभिमान को आत्मा से अलग कर। तिरसठ जन्म जो संघ के रंग से, अनेकों का संघ का रंग लेने से जो देहभान धारण किया है आत्मा ने, वो देहभान अलग हो जाता है। काय से मनन चिंतन मंथन रूपी सदर्शन चक्र घुमाने से तुम्हारा अहिंसा परमो देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं है, योग बल में हिंसा की कोई बात नहीं होती, बाहुबल में हिंसा ही हिंसा की बात होती है। श्रेष्ठ जन्म में कौन सी राजाइयां ली, कौन से बल के आधार पर ली? बाहुबल के आधार पर राजाइयां ली। कोई कोई प्रश्न भी करते हैं? कि राम की आत्मा में जब शिव बाबा आते हैं, सर्व शक्तिमान का पार्ट बजाते हैं और राम की आत्मा आकर के द्वापर कलयुग में हीरो का पार्ट बजाती है, तो जो भी है श्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्ट बजाती है तो वो छोटा मोटा राजा क्यों बनती है? बड़ा राजा क्यों नहीं बनती? इसका मतलब है उसने पूरा श्रीमत का फॉलो संगम युग में नहीं किया। अरे संगम युग में भी तो पूर्वजन के हिसाब किताब सामने आते हैं ना, शूटिंग तो होती है ना। अगर यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो बड़ा बड़ा ड्रामा में भी शूटिंग नहीं होगी। रामकृष्ण की आत्माएं ऐसी हैं जिनको संघ का रंग लगता तो है लेकिन बाप की याद से जल्दी छूट जाता है। और जो आत्माएं है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, वो पुरुषार्थ में उतनी सीखी है
तो जो भी पार्ट बजाए हैं वो पार्ट हिंसक पार्ट हुए हैं द्वापर कलि में, चाहे रामकृष्ण की आत्मा में ही क्यों न बजाए, लेकिन किसके संघ के रंग में आकर के जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, विदेशी आत्माएं हैं, वो हुजूम की हुजूम आत्माएं जब इस तस्वीर पर आने लगी तो उनकी बुद्धि से ये बात निकल गई क्या कि राजयोग किया होता है, उनमें भी देहवान आ जाता है तो देहवान के आधार पर उन्होंने भी हिंसक युद्ध की। हिंसक युद्ध से कभी भी विश्व की वार्ता ही नहीं मिल सकती। योग बल में तो हिंसा की बात होती है, तो तुम बच्चों को किसी को नाराज नहीं करना है। क्या है नाराज किया, किसी को कुछ उल्टा सुल्टा बोला, इसका मतलब बाहुबल का प्रयोग किया, मुख से रतन निकलने चाहिए, ये बहुत मीठे वर्षन से है। बाप जो वर्षन तुमको देते हैं उनमें बहुत मिठास भरा हुआ है, बाप के वर्षन से समझाते हैं। तुम बच्चे सतो प्रधान से तो तमो प्रधान बने हो, पहले तो तमो प्रधान नहीं थे, अब बने हो और उनके संघ के रंग से बने हो, वो संघ में आकर के खराब हुए हो, ओरिजिनल में तुम ऐसे खोए थोड़े, अब तुमको चेंज हो, अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। अनेकों का संग तरंग लिया तो तमो प्रधान बने, अब एक की याद में रहेंगे तो सतो प्रधान बने। स्तुति निंदा मान अपमान सब कुछ सहन करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है तमंग आता ही रहता है, दूसरों को ज्ञान बल कितना भी सुना लेंगे लेकिन बीच बीच में चेकिंग करें तो देखने में आता है तो तमंग जरूर आ जाता है। तमंग आया मन क्या आया, बुद्धि में आना चाहिए कि देवान आया, किसके संग के रंग से आया है, विदेशी विधर्मियों के संग के रंग से वो तमंग हमारे अंदर आता है। दस दस छह की वाणी का सूत्र कभी भी बिगड़ना नहीं, अगर बिगड़ते हैं तो इससे साबित होता है कि किसके राशि में है, रावण की राशि के लिए पाला झट बदलती रहती है, अभी अभी राम की पाला में अभी अभी रावण की पाला, बाप से जब सन्मुख सुनते हैं तो राम की पाला में आ जाते, बाहर की दुनिया में गए तमंग आ जाता तो कौन सी पाला में पहुंच जाते, रावण की पाला में पहुंच जाते। कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, युक्तियां तो बच्चों को बहुत बताई जाती है इस बात के लिए विघन आते हैं, ये जो समस्याएं आती हैं उनका कारण क्या है, कोई न कोई देवान आता रहता है, ये देवान जो आता है उसी के कारण ये फिर माया पीछे पड़ती है। बाप ने तो माया को काम दिया हुआ है, क्या जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको विघन पैदा कर, उनको समस्याएं पैदा करो। कोई भी हालत में समझाया जाता है कि आंख दिखानी पड़ेगी, मैंने कोई को डंडा नहीं मारना है, पाठ का भी तीर मारा जाता है, कहते हैं सांप काटे नहीं कम से कम फुफकार तो दे,
तो हर एक पूछ सकते हैं। सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, वो देख करके राय दी जाती है। कोई समय ऐसा होता है कि डंडे से डंडा मारना पड़े, क्या तो क्या तमंग में आ सके? नहीं, ये छोटा बच्चा है, ये दुनिया की असलियत को नहीं समझता है, इसलिए इसको दबराने के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मनमानी करते हैं, तो माँ बाप उनको क्या करते हैं, आंख दिखाते हैं, तो आंख दिखाते हैं कि अंदर से गुस्सा आ जाता है, अंदर से तमंग आता है, नहीं, इसलिए आंख दिखाते हैं ये चेंज हो जाए। तो कोई समय डंडे से डंडा मारना पड़े, नहीं तो फिर हेर पड़ जाएगी, बार बार अगर डंडे मारते रहेंगे तो क्या होगा, संस्कार पक्का हो जाएगा। रोज ही डंडा मारते रहे, ऐसे ही काम निकालते रहे, तो संस्कार पक्का हो गया ना। प्यार से काम जब न चले तो आंख दिखानी पड़े। पहला प्रयोग क्या करना है, प्यार से सुधारने का। अरे के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, दवाई सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, क्या कोई बहुत ढीठ होते हैं और कोई बड़े पोलाइट होते हैं, तो पोलाइट है प्यार से ही चेंज हो सकते हैं, तो उनको डंडा मारने की दरकार नहीं है। बाकी ये संभालना है हमसे कोई विकर्म पाप न हो जाए, नहीं तो हमको सौ गुना दंड भगत भुगतना पड़ेगा, और फिर ऐसे पाप करते करते हम आखिरी गिर पड़ेंगे। पाप पूछते हैं, जीवन में कोई विकर्म किया हो तो लिख करके बताओ, उसकी क्षमा हो जाएगी। क्या कहा है, हाँ ये लिख करके बताओ, ये कि ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसे ही जवानी जवाब हर्च बता दें, मुंह से बता दें तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हमने दिल तो अपना साफ कर दिया ना, लिख करके देने की क्या बात है। हाँ एक बार लिख करके दे दे और सौ बार मुख से बोलता रहे, तो सौ बार मुख से बोलने की वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन लिख करके दे दिया तो पक्का प्रूफ हो गया, देखो तुमने लिख करके दिया था, तो लिख करके देंगे तो क्षमा हो जाएगी। तो कहते हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम बाप को एकांत में बता देंगे, अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारा जो ज्यादा नजदीकी हो उससे लिखवा के दे दो, कोई भी भाषा में लिख दो, कोई जरूर थोड़े कि हिंदी में ही लिखो, बाप के पास तो सब तरह के हैंड्स हैं, सारे दिन का पोता में निकलना चाहिए कि हमने कोई पाप तो नहीं किया, किसी को कड़वा तो नहीं बोला, अगर हेर पड़ जाएगी चेकिंग करने की तो फिर बहुत खबरदार रहे। ऊंच के ऊंच बाप का बच्चा अगर पाप करेगा तो कितनी दुनिया वालों की लहनत पड़ेगी, क्या हमारा बाप जो पुण्यात्मा बनाने वाला है, देवात्मा बनाने वाला है, तो जो है देवात्मा बनाने वाला वो खुद पाप करेगा क्या, नहीं, तो बाप के बच्चे कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। बहुत चोरी आदि काम करते हैं, उनको उच्च पद नहीं पाना है तो सत्य कभी नहीं बता देते, ये पाते रहते हैं। बाप तो समझ जाते हैं कि इनको उच्च पद पाना नहीं है, क्या अंदर अंदर समझ जाते हैं कि इनको उच्च पद नहीं पाना है तो फिर डांट पर नहीं करते है? उनको सावधानी नहीं देते। अरे सावधानी तो देते ही रहते हैं, लेकिन जिनको उच्च पद नहीं पाना है तो वो सुधरते नहीं, तो अंदर में समझ लेते हैं कि ये तो लड़ने वाले नहीं, क्योंकि छिपाते रहते हैं, छिपाते रहते हैं। तो जो छिप करके काम करते हैं, छिपाते हैं, बाप के सामने भी सच नहीं बताना चाहते, तो ये पक्का हो जाता है कि ये जरूर आसुर बनने वाले। बाप कहे और फिर न करे तो फिर और भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। ऐसे तो अच्छा बाप से पूछते ही नहीं, बच्चे की शादी करानी है तो करा ले, बाप से पूछा और बाप ने मना कर दिया, मुरली में पढ़ लिया, वो तो बात अलग, क्या ये शादी बर्बाद ही है। वो तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बच्चे को नरक में ढकेलना चाहते हैं, ये तो बर्बादी कर दी। तो मुरली में पढ़ना बात अलग, लेकिन बाप के सन्मुख आकर फिर पूछना और पूछने के बाद फिर भी न करना तो सब ना बोझ पड़ जाए। इसलिए समझाते रहते हैं ऐसी कोई चोरी आदि का काम नहीं करना है, किसी को दुख देना, चीज उठाना, ये बहुत बड़े पाप बन जाते हैं। बच्चों को सब कुछ मिल सकता है, अगर तकदीर में नहीं है तो कुछ न कुछ करते ही रहते। बाबा खुद देखते हैं, झूठ बोलते हैं, बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो बाप क्या कर सकते हैं, हर बात में समझाने देते रहते। आजकल दुनिया में सबसे प्रेम से चलना होता है, क्या कहा द्वापर में और कलयुग में चलते रहे चाहे जैसे चलते रहे कोई बात नहीं, लेकिन आजकल मन अभी संगम युग में सबसे प्यार से चलना है, कोई से कड़वा नहीं चलना है, दुश्मन होने से मारने पर भी देरी नहीं करते हैं। क्या ऐसी तमो प्रधान दुनिया बन गई है कि अगर थोड़ी सी दुश्मनी उनको पैदा हो जाए तो मार भी देते हैं। अपनी कमाई में तत्पर रहना चाहिए, अभी ये कमाई का बड़ा अच्छा समय है, क्या आगे चल के ये कमाई नहीं हो सकेगी, अभी कमाई का अच्छा समय है। क्यों अभी क्यों अच्छा समय है, आगे क्यों नहीं कर सकेंगे, आगे तो हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और अनुभवी बन जाएंगे है? चलो लास्ट टाइम चल रहा है, फर्स्ट टाइम चल रहा है, लेकिन कारण क्या है, हाँ आगे चल करके परिस्थितियाँ ज्यादा बिगड़ जाएंगी, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि पुरुषार्थ करने की मार्जिन रहेगी नहीं। तो अभी बहुत अच्छा समय, बारंबार अपने को सावधान करना होता है। मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहा हूँ क्या, यह नहीं बन रहा हूं, हम पुण्यात्मा बनने के लिए आए हैं ना बाप के पास, तो पाप कैसे कर सकते हैं? पापों से तो हमेशा डरना होता है। किसी को खराब नजर से देखना वो भी पाप है। किसी के साथ खराब काम करना वो तो हो ही जाता है पाप कर्मणा में, उसकी तो माफी नहीं है। लेकिन अगर दृष्टि भी खराब पड़ती है तो वो भी पाप हो जाता है। कैसे
है?
वाइब्रेशन से
वाइब्रेशन खराब हो गया।
हाँ, दृष्टि से वृत्ति बनती है, वृत्ति माना वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हम खराब करते हैं तो दूसरे का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। माया ऐसे ऐसे पाप कराती है कि बात मत पूछो, फिर वो बच्चे काटने पड़ते हैं। माया जोर करके गिराती रहती है, फिर भी खड़ा होना चाहिए। इसमें सारा बुद्धि का काम है। क्या कि माया की अपोजिशन होती है तो हम बुद्धि में वो पॉइंट्स धारण करके रखे कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ये सब के लिए समझाते हैं क्योंकि सेंटर्स में हर प्रकार के बच्चे आते रहते हैं। शुक्रिया मानना चाहिए बाप का कि बाप ने हमें पहले से ही ताकीद करके रखा है। बाप से हम पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे जो कि हमको सजाएं खानी पड़े। कोई शैतानी अंदर में नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। बच्चे साफ दिल नहीं बनते हैं तो उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। भले कितना भी पतित हो, कितनी भी गलीज दृष्टि हो, कितने भी गलीज वृत्ति हो, लेकिन अंदर से एक बार साफ दिल हो जाए तो अहो सौभाग्य। लेकिन बच्चे छुपाते रहते, बाप से छुपाना माना अपना सत्यानाश कर। ऐसा कुछ पाप नहीं करना चाहिए जो कि वहां सजा खानी पड़े। अंदर बाहर साफ रहने वाले बच्चे जानते हैं कि हमको दैव गुण धारण करके ऐसा बनना है। देवताओं की ही महिमा गाई जाती है, असुरों की महिमा नहीं गाई जाती। कहां महिमा का गायन कहां होता है? है भक्ति मार्ग। अच्छा, भक्ति मार्ग में द्वापर युग में महिमा गाई जाएगी, उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा? वो तो भक्ति मार्ग में भगत लोग गायन करेंगे महिमा का, उससे हमारी आत्मा को क्या फायदा होगा? हाँ, यहाँ भी हमको दुआएं लेनी है और जो यहाँ दुआएं लेने के संस्कार पड़ते हैं वो वहां भी दूसरों की दुआ लेने के संस्कार पड़ते हैं। तो दुआएं लेना और दुआएं देना कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरे की अंदर अंदर बद्दुआ मिले। भले वो मुख से नहीं कहेगा कोई कारण या कारण बस, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन बद्दुआ का छोड़ देगा तो वो हमारे ऊपर असर जरूर पड़ेगा। तो बोला देवताओं की महिमा गाई जाती है, जो गायन होता है वो उन आत्माओं के ऊपर प्रभाव डालता है, यहाँ शूटिंग पीरियड में भी प्रभाव डालता है। हमारे सामने हमारी कोई प्रशंसा करता है, पीछे से प्रशंसा करता है, चारों ओर प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा का वाइब्रेशन हमारी उमंग उत्साह को बढ़ा देता है।
और हमारे सामने कोई ग्लानी करता है, पीछे से ग्लानी करता है, इधर उधर चारों तरफ ग्लानी हो रही है और हमने कर्म कर उल्टा किया है, तो वो उल्टा किया हुआ कर्म जो ग्लानी के रूप में आ रहा है वो हमारी उमंग उत्साह को डाउन कर देता है। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है, इसमें तो फायदा है ना। अभी हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है क्या? बाप समान बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है उसको भूल जाए। बाप के गुण अलग और बच्चों के गुण अलग। हमको तो देवता बनना है, हमको बाप नहीं बनना है। बाप जो पार्ट बजाता है वो पार्ट हमको नहीं बजाना है। बहुत ऐसे सोच लेते हैं कि हम देवता है तो सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो बाप भी ऐसे होगा। नहीं, बाप तो सर्वशक्तिवान है। बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है श्रीमत पर चलते। सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है तो वो हमको कर्म की गति सिखा रहा है। क्या गति सिखा रहा है? बच्चे तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। लक्ष्य को अगर सामने रखेंगे तो लक्षण आएंगे। लक्ष्य तुम्हारा देवता बनने का है, भगवान बनने का तो लक्ष्य नहीं है। अगर भगवान बनने का लक्ष्य है तो भगवान भगवती तो एक ही होते हैं दुनिया में, क्या अनेक होते हैं, अनेक हो जाएंगे तो सर्वव्यापी भगवान साबित हो गए। तो जो एक का पार्ट है उनको अपना पार्ट बजाने दो, लेकिन तुमको तो देवता बनना है। देवता बनना है तो देवता ही गुण धारण भी करना। तो पक्का कर देना चाहिए हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। बाप तो निर्गुण कहा जाता है, हिंदी मार्ग में बाप को क्या कहते हैं? निर्गुण। निर्गुण माने गुणवान का पार्ट नहीं बजाता है, संपूर्ण अहिंसक का पार्ट नहीं बजाता है। अगर वो भी अहिंसा संपूर्ण अहिंसक का पार्ट बजाए तो क्या होगा? ये दुनिया खराब होने वाली नहीं है। बिल्कुल मीठा शांत स्वरूप बनना है, जांचना होता है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे संतोष की तीन दे रूहानी बच्चों को मान पिता बाप दादा का दिल व जान से याद प्यार और गुड नाइट।